ओम शांति। परमात्मा प्यार की दिव्य आभा, योग्युक्त जीवन, स्नेहमय दृष्टि, शीतल शांत चित्त, ज्ञान से भरपूर, ऐसे आदरणीय रामलोचन भाई जी का हम बेहद किस हॉल में स्वागत करते हैं, करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी का व्यक्तित्व देखकर ही हम सभी को उनकी पहचान हो जाती है कि किस अवस्था में अपना समय गुजारते हैं और कैसे जीवन बिता रहे हैं। भाई जी के परिचय में राम जन्मभूमि अयोध्या में आपका जन्म हुआ है। 1971 में कलकत्ता से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। 1971 में ही बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया और बाबा की वीआईपी भंडारे में सेवाएं देकर ढेर सारी अनेकों की दुआएं प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय वीआईपी भंडारे में सेवाएं दे रहे हैं, देश विदेश में सेवाएं करके अनेक आत्माओं को बाबा के ज्ञान से लाभान्वित कराया। अनेक भट्टियां, राजयोग शिविर तथा क्लासेस आप कराते रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय स्नेहमयी रामलोचन भाई जिससे हम लाभान्वित होते हैं, इस विषय पर निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनने की विधि क्या है, तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय रामलोचन भाई जिससे आप हमें लाभान्वित करें। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी चाहे महाराष्ट्र या आंध्रा, जहां से भी आए हैं, आप लोग बहुत महान बच्चे हैं। आप पर बाबा की विशेष वरदान की दृष्टि कहो या शक्ति कहो, विशेष मिल रही है। क्यों? इसका उदाहरण है कि पहले पांडव भवन में एक बार पार्टी आई हुई थी तो बहुत आंधी तूफान उस बीच में आया, तो टेंट में भी लोग सोए हुए थे तो टेंट भी गीला हो गया था। तो बाबा ने कहा कि प्रकृति ने मेरे बच्चों को बहुत हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे बहुत बहादुर बच्चे निकले। इन्होंने संकल्प लिया मुझे बाप दादा से मिलन मनाना ही है, और सन्मुख आस बाप दादा मिल रहा है, और ऐसे बच्चों को इष्टा दुआओं की और शक्तियों की गिफ्ट दे रहा है। तो आज वही सीन है, बारिश हो रही है, ठंडी भी है, लेकिन आप सभी बाबा के वही कलप पहले बहादुर बच्चे हैं, जो प्रकृति कुछ भी करे लेकिन मुझ आत्मा को बाप दादा के घर में पहुंचकर बाप दादा से मिलन मनाना ही है और बाप से इष्ट्रा सकास दुआ और शक्ति मिलनी ही है। शायद इसीलिए आप लोगों का स्टेट का नाम बाबा ने महाराष्ट्र दे दिया है। आंध्रा भी उसके अंदर में ही आ गया, महाराष्ट्र जोन में आ गया। तो बहुत 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 मुबारक हो आप सबको बाबा से इष्ट्रा प्राप्त करने का। अपने पुरुषार्थ से जो करेंगे वो तो मिलेगा ही, लेकिन इष्ट्रा बाबा से जो मिलेगा उसकी विशेष मुबारक है। इष्ट्रा मिलेगा इसका आप अभी से ही अनुभव कर रहे होंगे। प्रकृति विपरीत है लेकिन आपके अंदर खुशी की लहर उठ रही है। ये इष्टा प्राप्ति है, भगवान की इष्टा दुआ है जो आपको मिल रहा है। और आप बच्चे भी वही महान बच्चे हैं जो ब्राह्मणों का विशेष लक्ष्य ही है निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। निरंतर सिर्फ एक दो घंटा वाले नहीं, चार छह घंटा वाले नहीं, लेकिन निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी। जो आत्मा इस स्थिति को प्राप्त कर लेती है निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी, ऐसी आत्मा बहुत जल्दी बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेती है। तो आज आपको बताते हैं कि निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी कैसे रह सकते हैं। तो निरंतर सेवाधारी रहने के लिए चार प्रकार की सेवाएं हैं। उन चारों प्रकार की सेवाओं में किसी न किसी सेवा में सदा बिजी रहो और रह सकते हैं। तो वो चारों प्रकार की सेवा है। पहला है यज्ञ सेवा, जो आप तन और धन से करते हैं। यज्ञ सेवा। दूसरी है मनसा सेवा, जो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रख करके पाप के साथ कंबाइंड होकर करते हो। तीसरी सेवा है विश्व की सेवा, जो वाणी के द्वारा या भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा, चाहे टीवी है या मोबाइल, जो भी साधन है, मेला है, जो भी है, भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा सेवा, और चौथी है पावरफुल वृत्ति के द्वारा शुद्ध वाइब्रेशंस बनाने की सेवा। ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि दुनिया में बहुत खराब वायुमंडल वाइब्रेशंस है, उनको चेंज करना बहुत बड़ी सेवा है। तो ये चार प्रकार की सेवाएं हैं जो किसी न किसी सेवा में बिजी रहो, अभी क्लियर करते हैं। और चार प्रकार की याद है, उन चारों में किसी न किसी प्रकार की याद में स्वयं को बिजी रखो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। पहला है अमृत बेला पावरफुल योग हो। अमृत बेला पावरफुल योग हो, ये फाउंडेशन है। जिस बच्चे का अमृत बेला पावरफुल हो गया, उसका सारा दिन स्वतः पावरफुल रहेगा, क्लियर करेंगे। दूसरा है बाप दादा से रू रिहान करना, संबंधों का सुख लेना, ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि है आत्मा समझ कर शिव बाबा को याद करना, आत्मक स्वरूप में टिक करके शिव बाबा को याद करना। और चौथा है बाप समान की स्थिति में स्थित होकर बाप के साथ साथ विश्व का चक्कर लगाना, विश्व की आत्माओं का दुख दर्द दूर करना, भक्तों को साक्षात्कार कराना, दुखियों का दुख दूर करना, ये बाबा के साथ समान की स्थिति में अर्थात मास्टर बनकर बाबा के साथ साथ सेवा करना। तो इन चार प्रकार की विधियों में किसी न किसी विधि में स्वयं को बिजी रखो तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। अब पहले इन चारों को क्लियर कर देते हैं, फिर सेवा पर बताते हैं। पहली बात है अमृत बेला पावरफुल हो। अगर अमृत बेला पावरफुल होगा तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपका पुरुषार्थ स्वतः चलता रहेगा। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर समझाया था कि देखो जब ट्रेन चलती है आप लोग ट्रेन में आए होंगे देखा है कि जब ट्रेन चलती है तो इंजन को मेहनत लगती है खींचने में, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफी दूर तक ट्रेन स्वतः चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आत्मा ने अमृत वेले अटेंशन देकर पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपका योग लगा रहेगा। तो आपका अमृत बेला पावरफुल बने कैसे? योग में तो सब उठते हैं, लेकिन पावरफुल योग रहे उसकी विधि क्या है? पावरफुल योग के लिए आज से प्रयोग करके देखना ये विधि। आज शाम को जब आप सोने जाओ तो सबसे पहले बाबा को अपना टोटल चार्ट दे दो। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या साधारण बीता, पावरफुल बीता, जो भी है, सब कुछ एक एक चीज बाबा को बता करके, कुछ गलती हुई साधारण रूप से बीता, बाबा से माफी ले लो। और जैसे बाबा से क्षमा लोगे तुरंत बाबा आगे के दिन के लिए आपको प्रेरणा दे देगा। अच्छा बच्चे, बीती सो बीती, बाप को दे दिया, खत्म हुआ। अब आगे से बच्चे ऐसे अटेंशन देना। तो अगर शाम को चार्ट देकर और बाबा की याद में सोएंगे तो आपका अमृत पेला पावरफुल होगा। चार्ट देना माना किचड़े को जलाना। आपने सुना होगा बाबा ने मुरली में कहा था कि जो बच्चा शाम को चार्ट देता है डेली, वो धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। शाम को चार्ट देना अर्थात सारा दिन का खाता खत्म कर देना। तो जब रोज खाता ही खत्म कर दोगे तो सजा का प्रश्न ही नहीं है। तो एक विधि ये। दूसरी विधि है कि आपका पावरफुल योग तब लगेगा जब आपका पहला संकल्प पावरफुल होगा। जो आंख खुलते ही जो संकल्प आता है, आज चेक करना आप, आंख खुलते ही जो संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को ले करके आता है। अगर आप खुलते ही आपका पावरफुल संकल्प आ जाए तो आपका योग पावरफुल लग जाएगा। लेकिन देखा है मेजॉरिटी, आप सबका भी अनुभव होगा, तीन प्रकार का संकल्प आता है किसी न किसी प्रकार का। कोई सोकर उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, कोई उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है, जो भी बजा हो उस अनुसार सो जाते हैं या उठ जाते हैं, और कोई जो शाम को चार्ट नहीं देते हैं, पिछली बातों के स्मृति में ही सो जाते हैं, वो सोकर उठते ही वही बात याद आती है। और योग में वही अपना फोर्स दिखाती है। इसमें कई बाबा के बच्चे ऐसे होंगे, शायद नहीं भी होंगे, जो शाम को समाचार सुन करके सोते हैं। हैं जो शाम को समाचार सुनकर सोते हैं, नहीं है, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो शाम को सो समाचार सुना या धारावाहिक देखा या कुछ भी, उसका मन के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। सुबह अशरीरी बनने नहीं देगा, बार बार कोई न कोई बात याद आती रहेगी, कोई न कोई बात याद आती रहेगी। तो जो पहले सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं, वो आप परिवर्तन करो, ये राइट नहीं है। क्या परिवर्तन करो? सोकर उठते ही सिर्फ बाबा नहीं, लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग, मात पिता दोनों से गुड मॉर्निंग करो। फिर दो दिन पहले मुरली चली थी, मात पिता से दुआएं लो, ब्रह्मा मां शिव पिता, मात पिता है, दोनों से दुआएं लो, गुड मॉर्निंग दोनों से करो, याद शिव बाबा को करो, फॉलो ब्रह्मा को करो। ठीक है, समझ में आई बात? याद दोनों को गुड मॉर्निंग करो, लेकिन याद शिव बाबा को करो। तो अगर पहले ही संकल्प में आपको दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए, तो ये संकल्प आपको इतना महान बना देगा, अज्ञान काल में भी गायन है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो ये दोनों की आशीर्वाद बहुत कमाल करती है। तो क्या विधि अपनाएं जो पहले ही संकल्प में दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए, क्योंकि शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो अशरीरी बनना पड़ेगा, बिना आत्मक स्वरूप के टिके बिना शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो नहीं सकती। ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो फरिश्ता बनना पड़ेगा, बिना फरिश्ता बने ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो नहीं सकती। तो जब आप पहले ही संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बन जाओ, तब दोनों से एक साथ गुड मॉर्निंग हो सकती है। वो विधि क्या है? बाबा ने मुरली में बताया था, आंख खुलते ही आपका ये संकल्प आए, और आएगा तब आपको बताया, जब शाम को चार्ट देकर बाबा की याद में सोएंगे तब, आंख खुलते ही ये संकल्प आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। नीचे से ऊपर नहीं चढ़ो, ऊपर से नीचे आओ, अवतरित हो। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, फिर ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। इस विधि से ब्राह्मण के नाते ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो गई, आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई। दोनों से गुड मॉर्निंग करोगे, अगर शरीर से डिटैच हो गए थे और गुड मॉर्निंग किया, तो ये कैसे पता पड़े गुड मॉर्निंग पहुंची? उसका प्रूफ है कि आपको पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। ऐसा अनुभव होगा जैसे बाप दादा ने अपनी गोद में बिठा लिया है, सिर पे हाथ घुमा रहा है, प्यार दे रहा है, शक्तियां भर रहा है। ये आपको अगर अव्यक्त बन गए तो ये अनुभूति होगी। अगर आप पहले संकल्प में अशरीरी नहीं बन पाए, अव्यक्त नहीं बन पाए, तो दोबारा पुरुषार्थ करो, तिबारा पुरुषार्थ करो, चौथी बार पुरुषार्थ करो। मिलन मना करके ही बिस्तर से पैर नीचे उतारू। ऐसे नहीं, हमने तो आंख खोली, अच्छा बाप दादा गुड मॉर्निंग, ये नहीं, हमने तो कर लिया बस। अच्छा आपने कर लिया, लेकिन जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक रिस्पांस कैसे मिलेगा? आप किसी को आवाज दो, जब तक आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो कैसे आपको जवाब देगा? तो बाप तक आपका मन की आवाज पहुंच जाए उसके लिए अव्यक्त बनना आवश्यक है। तो ये विधि आज अपनाकर देखो, जब तक आप अशरीरी न हो जाओ तब तक बिस्तर से पैर नीचे नहीं उतारो। दो बार, चार बार, छह बार, दस बार गुड मॉर्निंग करो। अगर सच्चे दिल से लग जाओगे तो बाबा की हजार गुना मदद मिल जाएगी और आप अवश्य सफल हो जाएंगे। तो अमृत बेला को पावरफुल बनाओ, एक विधि ये है। दूसरा है बाप दादा से रू रिहान करो। आप अशरीरी नहीं हो पाते हो, टोटल शरीर से डिटैच नहीं हो पाते हो, तो आप बाप दादा से इन संकल्पों के साथ कि बाबा जैसे शिव बाबा आप ब्रह्मा के तन में आए हैं, ऐसे मैं आत्मा भी इस तन में विराजमान हूं, बाबा आप भी लाइट के कार्ब में बैठे हैं, मैं आत्मा भी लाइट के कार्ब में बैठी हुई हूं। इस स्थिति को बना करके सामने बाप दादा को देखते हुए रूह रिहान करो, चाहे पुरुषार्थ के बारे में, चाहे सेवा के बारे में, चाहे कोई बात पूछने के बारे में, चाहे कोई समस्या हो उसके बारे में, चाहे बाबा की महिमा करो, कमाल है बाबा आपकी, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो। मुझ आत्मा को तो स्वप्न में भी नहीं था कि मैं आत्मा आपको पा सकती हूं, आपने कितना कृपा मेरे ऊपर की, मुझको अपना बना लिया बाबा, शुक्रिया मीठा बाबा शुक्रिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे बाबा से मीठी बातें करो, धीरे धीरे बाबा से प्यार जुटने लगेगा और जैसे प्यार जुटने लगेगा फिर आपका योग सहज हो जाएगा। जो बाबा कहता प्यार से मुझे याद करो, प्यार ऐसे नहीं भगवान से हो जाएगा, क्योंकि भगवान निराकार है, आकार के तन में है, तो निराकार आकार बन करके रहो तो प्यार जुट जाएगा। तीसरा है आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो, आत्मक स्वरूप में टिको, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, दोनों परम धाम की निवासी हूं, आत्मक स्वरूप में टिक कर बाबा से शक्ति लो, विश्व में फैलाओ। जितना आप बाबा से करंट खींचेंगे उतना आपके पाप जलते जाएंगे, पाप जलते जाएंगे। तो जब आपको समय मिले तो इस विधि का अभ्यास करो। चौथा है समान की स्थिति के द्वारा, बाप के समान की स्थिति, जैसे शिव बाबा शांति का सागर है तो मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूं। समानता की स्थिति से समान स्थान पर बैठकर समान रूप से विश्व की सेवा करो, वहां से लाइट माइट फैलाओ। आत्माओं को, प्रकृति को पावन बनाओ, पशु पक्षी जीव जंतु सब पर रहम की किरणें दो, सब सुखी बन जाए, बाबा के साथ पूरे विश्व का चक्कर लगाओ, भक्तों को भक्ति का फल दो। आप ये साथ बैठ कर करो, इसके लिए एक तो बहुत अशरीरी होने का अभ्यास और उपराम स्थिति, इस दो चीज की जरूरत है। इस अभ्यास से समानता जल्दी आ जाएगी। जितना समान स्थिति में सेवा करेंगे, साथ बैठेंगे बाबा के, उतना बाबा के संग का रंग आत्मा को समान बनाता जाएगा। आत्मा चमकने लगेगी। तो ये चारों प्रकार की विधि में कोई न कोई विधि से अपने को बिजी रखो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। सिर्फ सुबह क्लास में आकर या योग के समय आकर योग किया वो तो करना है, नियम है, लेकिन उतना तक ही नहीं, हमें निरंतर के अभ्यासी बनना है। निरंतर का अभ्यास क्लास में मदद देगा और क्लास का अभ्यास निरंतर बनने में मदद देगा। अगर दोनों में एक भी छोड़ा तो दूसरा छूट जाएगा। अगर आप सारा दिन निरंतर बनने के अभ्यासी नहीं रहे तो सुबह कितना भी कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ा सा योग लगेगा तो लगेगा, बाकी योग लगेगा नहीं। और अगर सुबह योग नहीं लगा तो मुरली सुनते समय मुरली की धारणा भी नहीं होगी, मन भटकेगा, अशरीरी नहीं हो पाएंगे। शरीर से हाजिर हैं लेकिन मन बुद्धि से अब्सेंट रहेंगे, धारणा नहीं होगी। इसलिए निरंतर के अभ्यासी तो क्लास में भी सफल, और क्लास में सफल तो निरंतर अभ्यासी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है निरंतर सेवाधारी। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते, और सेवा आवश्यक है। सेवा अगर नहीं करोगे, जो भी ब्राह्मण अगर चारों प्रकार की सेवा में कोई सेवा नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, उसको माया छोड़ेगी नहीं। भले मोटे विकार से बच जाए, अपने को ब्रह्मचारी बना भी ले, लेकिन क्रोध उसमें 75% कम से कम रहेगा। नहीं परिवर्तन कर पाएगा। सेवा से हमारा खाता खत्म होता है। मान लो हमने आपको गाली दिया हो, थप्पड़ मारा हो, कुछ अपशब्द बोला हो, हमारा खाता आपसे बन गया, लेकिन फिर हम आपकी उससे 100 गुना ज्यादा आपकी सेवा कर दें, तो क्या हमारा खाता खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? ऑटोमेटिक आपके दिल से निकलने लगेगा, कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो छोड़ो, बात खत्म हो गई। तो सेवा हमारे खाते को खत्म करता है, और जितना खाता खत्म होता है उतना योग लगाने में सहज होता है। दूसरी बात, सेवा से हमारा खाता खत्म होता है तो हमारा कर्म भोग कब हो जाता है? क्योंकि इन्हीं कर्म इंद्रियों से कर्म किया है, अच्छा या बुरा, तो इन्हीं कर्म इंद्रियों को भोगना पड़ेगा। तो अगर अभी आप सेवा करो तो आपका कर्म भोग कम हो जाएगा। सूली से कांटा होगा, हां किसका कितना ज्यादा है वो अलग बात है, जिसका जितना ऊंचा पद है उसको उतना ही ज्यादा कर्म भोग भोगना पड़ रहा है, क्योंकि उसका खाता ज्यादा है। लेकिन सेवा की शक्ति उसको कर्म भोग को फील नहीं होने देता है। दूसरे देखने में लगता है इनको बहुत दर्द है, भोग रहे हैं, और जिसको कर्म भोग है उसको दर्द की फीलिंग ही नहीं है। अगर दर्द की फीलिंग ही नहीं तो कर्म भोग होना ना होना बराबर ही है। कर्म भोग अगर आया है और आप सेवा करते जा रहे हैं तो आपके कर्म भोग के समय भी सेवा होती रहेगी। कई ऐसे थोड़ा बीमार होते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते बीमारी को दूर करने का साधन सेवा ही है। जिसका लक्ष्य है ये, वो बीमारी भी सेवा कराती रहेगी। सेवा का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना ही नहीं है, तो चार प्रकार की सेवा बताई थी। देखो अपनी गुलजार दादी थी, सेवा भी करती थी, अखंड योग भी था। रिजल्ट जब दादी बीमार पड़ी, कैंसर था, और जब बॉम्बे ले गए हॉस्पिटल में, तो जो डॉक्टर ने चेक किया अशोक मेहता, तो जैसे ही गुलजार दादी को देखा, देखते ही उसको दादी के द्वारा देवी का साक्षात्कार हो गया। सोचो आप, ये कई है ऑपरेशन कराने, पेशेंट है और हो रहा है देवी का साक्षात्कार। उसने अपने घर में फोन किया, अपनी पत्नी को बुलाया कि आओ हॉस्पिटल में देवी आई है, दर्शन कर लो। और निमित्त बन गया ग्लोबल हॉस्पिटल को खुलवाने के लिए। ऊपर बाबा का पक्का बच्चा बन गया, जैनी था। तो सेवा बहुत जरूरी है। बीमारी के समय सेवा से भागो नहीं। आप आज अनुभव करके देख लो, चाहे सेंटर पर चाहे यहां, थोड़ी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी खराब है, और यज्ञ सेवा करके देखो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है या नहीं, करके देखो, ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेवा किया तो सेवा से आपका जो खाता था बीमारी का वो खत्म हो गया, ठीक हो गए। इसलिए चारों प्रकार की सेवाओं में कोई ना कोई सेवा करते रहो। पहली बताया यज्ञ की सेवा, यज्ञ की सेवा अर्थात कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा में यज्ञ में जैसे आप घर में करते हो, ऐसे बाबा का घर यज्ञ है, चाहे सेंटर चाहे मधुबन। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो थोड़ा पद वाले हैं या थोड़ा पैसे वाले हैं, उनको अहंकार आ जाता है कि हम कैसे सेंटर पर झाड़ू पोछा लगाएंगे। लेकिन ये नहीं समझते कि ये सेंटर है कौन सा स्थान। सेंटर ब्रह्मा कुमारियों का नहीं है, बहनों का नहीं है, किसका है? स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा का है। और वो स्थान है जिस स्थान से देवता बन के निकलते हैं। सोचो उस सेंटर से क्या बनेंगे आप लोग, क्या बनेंगे, देवी या देवता? तो जिस स्थान पर आप देवी या देवता बन के निकले, वो स्थान कितना महान है। आज देवी देवताओं की मूर्ति के आगे, वहां तो देह अभिमान नहीं करते, वहां जाके तो पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे मूर्ति के आगे, और यहां तो चैतन्य बनाया जाता है। और ये भी पक्का सोच लो, जो जितना कर्मणा सेवा यज्ञ का करता है वो उतना बीमार कम पड़ेगा, उसका शरीर ठीक रहेगा। लौकिक दुनिया में सब बीमारी का इलाज क्या बताते हैं? एक्सरसाइज करो, बताते हैं ना, एक्सरसाइज करो। और सेवा क्या है? सेवा एक्सरसाइज ही तो है। एक्सरसाइज में क्या करते हैं? ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, यही है ना एक्सरसाइज। और यहां भी इतना बड़ा पतीला उठाओ, कितना ताकत लगती है, हो गई एक्सरसाइज या नहीं? इतना सामान उठा करके ट्रक पर चढ़ाओ, ऊपर हाथ हो गया नहीं हो गया? यज्ञ की एक एक सेवा एक्सरसाइज है। और एक एक सेवा बहुत बड़ी प्राप्ति कराने वाली है। कर्मणा सेवा यज्ञ की कामन नहीं, कहा भी जाता है यज्ञ की सेवा मन इच्छित फल देने वाली है। मन इच्छित फल देने वाली, वो तो यज्ञ हवन समझ लिया, लेकिन ये यज्ञ चाहे सेंटर चाहे मधुबन, इस यज्ञ की सेवा से आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। बाबा तो कहता है कि यज्ञ की सेवा में दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी स्वाहा कर दो तो फरिश्ता तो अपने आप बन गए। फरिश्ता में और मनुष्यों में क्या अंतर है? हड्डी मांस नहीं फरिश्ते में, स्वाहा कर दो अपने आप फरिश्ता बन जाओगे। हम मधुबन में थे एक बार, खाना बना रहे थे, सब्जी बना रहे थे, उस समय लकड़ी पर खाना बनता था, तो चूंकि कढ़ाई बड़ी थी तो खाना बना रहे थे, सब्जी चला रहे थे, जानकी दादी चक्कर लगाने आई और उस समय वो सब्जी लास्ट स्टेज पर थी, अगर थोड़ा भी चलाने में ढीला करते तो नीचे लग जाता, कढ़ाई में चिपक जाता, इसलिए फास्ट चलाना पड़ रहा था। तो हम उसी में पूरा बिजी थे, जानकी दादी कब पीछे आके खड़ी हो गई मुझे पता नहीं पड़ा, लेकिन जब सब्जी पक गई, कढ़ाई को खींचा उतारा, इधर चूल्हे से हटाया, ऐसे पसीना पहुंचा, तब तक देखा पीछे दादी खड़ी है। अब कितनी देर हुआ पता नहीं, चाहे उसी समय आई हो या पहले आई हो पता नहीं मुझे। तो मैंने दादी से प्रश्न पूछा, हम कहा दादी ऐसे समय पर जब आप आए मुझे आपका पता नहीं पड़ा आप आए हो, और ऐसे समय पर हम बाबा की याद में भी नहीं थे, जो आत्मा समझकर बाबा की याद में थे वो भी नहीं था, लेकिन कोई दूसरा और संकल्प भी नहीं था, बस एक ही संकल्प यही था सेवा का, दादी इस किस खाते में जाएगा, सिर्फ सेवा का संकल्प था उसका। तो दादी ने कहा इस सेवा का रिजल्ट सतयुग में आपको कंचन काया मिलेगी, अभी बाबा की याद नहीं थी इसलिए इष्ट्रा जमा नहीं हुआ, लेकिन ये श्रेष्ठ कर्म के खाते में जमा हो गई। तो श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा होते 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 दूसरा खाता अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इसलिए यज्ञ की सेवा को साधारण नहीं समझो। कोई भी भाई बहन हो आप सेंटर पर जरूर कर्मणा सेवा करो, आप सेवा करना शुरू करो, बड़े सेंटर है वहां सर्वेंट रखना पड़ता है, आप अगर करना शुरू करो तो सर्वेंट रखने से बच जाए तो उसका जो पैसा है वो आपके खाते में पदम 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 गुना होकर ज्यादा जमा हो जाएगा। ऐसे आपका ही पैसा वेस्ट जा रहा है, हमें सर्वेंट को देना पड़ा है, बहने कहां से लाई, आप लोगों ने बाबा की भंडारी में डाला वही है, आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, एक प्रकार से हम भिखारी आत्मा को दे रहे हैं, सर्वेंट कोई निर्भिकारी नहीं है। और अगर आप सब बाबा के बच्चे वही सेंटर की सेवा संभाल लो तो आपका पैसा का पैसा पदम गुना बचेगा, यज्ञ सेवा करोगे तन तंदुरुस्त होगा और इस श्रेष्ठ कर्म का फल आपका पास्ट का खाता खत्म होता जाएगा। कितना फायदा हुआ, ठीक है पांडव मंजूर है, मंजूर है, देह भान तो नहीं आएगा? नहीं, देह भान तो रावण की प्रॉपर्टी है, वो तो रावण को दे दिया, अब तो हम बाबा के। बाबा माना ये जन्म अलौकिक हो गया, ये लौकिक वाला शरीर नहीं है, अलौकिक वाला शरीर है। और अलौकिक माना अलौकिक सेवा के लिए, अलौकिक कर्तव्य के लिए, अलौकिक कार्य करने के लिए बाबा ने दिया है। ठीक है माताएं, माताएं ठीक है? या घुटना काम नहीं करता है, कमर दर्द करता है, ये करता है, ऐसा तो नहीं कुछ? आप सेवा करना शुरू करो, घुटना काम करने लगेगा, कमर काम करने लगेगी। और अगर सेवा छोड़कर घुटने को देखोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि हिसाब किताब है। इसलिए यज्ञ की सेवा को इतना ही महत्व देकर करो तो जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामलोचन भाई जी, आपने बहुत गहरी बातों को बहुत सहजता से समझाया और सेवा का कितना महत्व है इस पर प्रकाश डाला। आदरणीय रामलोचन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभी 7 से 8 बजे तक योग होगा, हम सभी बाबा की याद में गहन अनुभव करेंगे। ओम शांति।
प्रिय